السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. رمضان کے ان قیمتی دنوں میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزید خوبصورت ہونے کا حکم دیتا ہے اور اس سے فرماتا ہے، میرے نیک بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ کے اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے، ان کے لیے تو سج جا. تو آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگنا ہو گیا، قرآن پڑھنا ہو گیا، تراویح ہو گیا، جو بھی آپ کی تھکاوٹ ہے، تو یہ چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت سجا رہا ہے. لہٰذا یہ جو تھکاوٹ ہے، یہ تو انسان کو بھول بھی جاتی ہے. آپ کو بھلا کوئی یاد ہے پچھلے سال آپ کتنا تھکی تھی؟ کوئی بھی یاد نہیں. تو تھکاوٹیں بھول جاتی ہیں، لیکن اس کے اجر باقی رہتے ہیں. اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا جو ملنا ہے وہ باقی رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ جتنا مرضی رات کو جاگ جائیں، رمضان ختم ہو گیا تو پھر وہ جاگنا یہ تھوڑی ہوگا جو ان راتوں میں ہے، چاہے وہ لیلت القدر ہے یا نہیں ہے. ویسے تو کوئی بات کوئی رات بھی ہو سکتی ہے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رات میں بھی اپنی مخلوق کی طرف جھانک کر دیکھے تو ہمیں عبادت میں پائے. یہ دعا ہونی چاہیے. اور ان راتوں میں جہاں ہم قیام کر رہے ہیں، کیونکہ قیام بھی پچھلے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بنتا ہے، لیلت القدر میں وہاں دعا کے اوپر بہت آپ نے زور دینا. دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور وہ دعا جو لیلت القدر میں کی جائے وہ تو ظاہر ہے کئی گنا زیادہ ہمارا چانس بڑھ جاتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے. اور سجدے میں ضرور کریں، سجدے میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، چاہے فرض ہیں، سنتیں ہیں، جو بھی ہیں، اس میں دعا کریں. اور یہ والی دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر کہیں گے تو میرے لیے، فاعف عنا کہیں گے تو سب کے لیے. اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں نا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، تو وہ والی بھی ٹھیک ہے دعا، لیکن زیادہ یہ والی سٹرونگ حدیث ہے، اللہم انک عفو تحب العفو. عافیت بھی مانگے، عف بھی مانگے، عفو والا عافیت، دونوں ہی چیزیں مانگے. عافیت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مجھے یعنی جو بھی ہر قسم کا شر ہے اسے بچا کے رکھے، اور ہر قسم کی خیر ہی پہنچے، یہ عافیت ہے. اور عفو تو آپ کو پتہ ہے عف کا مطلب کیا ہوتا ہے، مٹا دینا، اریز کر دینا. تو وہ بھی ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہ ایسے اریز ہو جائیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر تم دعا کرنا چاہو مگر وقت کم ہو، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وقت کم ہو، ایک دم روزہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا، ابھی تو میں نے دعائیں بھی نہیں پوری مانگی تھیں، تو پھر اس وقت کیا دعا مانگی جائے. اور دل میں بھی بہت ساری حاجتیں جمع ہوں کہ یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، تو فرمایا کہ ساری دعاؤں کو اس ایک دعا میں جمع کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. کیونکہ اگر اس نے معاف کر دیا نا تو تمہاری ساری حاجتیں بغیر مانگے ہی وہ پوری کر دے گا. سمجھائی؟ تو یعنی ہم بخشش بہت مانگے، اور اس دعا کو تو خاص طور پہ عفو अफूव में बहुत सारे माने आ जाते हैं, कोई एक माना नहीं है, ये हर किस्म का अफूव, यानी दीन का भी और जिस्म का भी। ऐसे तो हमने मांगा है ना कि माफी हम मांग रहे हैं, लेकिन दीन का अफूव क्या है कि नेकी मुझे दे दे, जिस्म का अफूव क्या है कि बीमारियों से मुझे महफूज रख। तो अफूव का माना कसरत का भी आता है। अल्लाह ताला से हम जब इन्ना का अफूवन तुहिब्बुल अफाफ कहते हैं, तो हम अल्लाह ताला से कसरत भी मांग रहे हैं, यानी खैर की कसरत, नेकी की कसरत, भलाई की कसरत। तो अल्लाह ताला अफूव है उस माने में लेंगे कसरत के, तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अता करता है, जितना मांगा होता है उससे भी ज्यादा अता करता है, क्योंकि वो अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूव तू अफूव है। तो वो चाहे तो गुनाहों को नेकियों में बदल दे, ना सिर्फ ये कि उनको मिटा दे, बल्कि उनको नेकी, उनकी जगह नेकी लिखी जाए। तो इसलिए ये दुआ तो लाजमी है कि हमने मांगनी है, बहुत ज्यादा मांगनी है, उठते बैठते मांगनी है, और इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है हमने। जानते हैं कि फरिश्ते जो हामिलीन अर्श है, उनकी भी अल्लाह ताला ड्यूटी लगा देता है कि वो भी ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला ने सूरह गाफिर में फरमाया ना, अल्लदीना यहमिलून अर्श व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। वो क्या करते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं, और जो अर्श के इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, चार इस वक्त फरिश्तों ने अर्श को उठाया, और बहुत अजीम और बहुत बड़े फरिश्ते हैं वो, और अर्श के इर्द गिर्द भी फरिश्ते हैं। एक तो उनकी ड्यूटी ये है, वो अल्लाह ताला की हम्द तो बयान करते ही हैं। अब आप सोचें कि उनके मकाम कितने बुलंद हैं, कितनी अल्लाह ताला से करीब हैं। साथ साथ वो क्या, वो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, यस्तग़फ़िरूना लिल्लदीना आमनू आता है, वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, और दुआएं करते हैं अपने लिए नहीं, ईमान वालों के लिए। नहीं, सुभान अल्लाह, जाहिर है फरिश्ते तो यफालूना मा युमरून, अल्लाह ताला जो उनको हुक्म देता है ना वो वही करते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया हुआ है कि तुम दुआएं करो, और जब आप अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफाफ कहते हैं, तो आप जमीन पे कह रहे हैं और वो वहां पर फरिश्ते आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आप जब तो हिब्बुल अफवा पे पहुंचे ना, तो जरा रुक जाए, सोचें दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसमें ऐसी खूबी हो कि उसको मोहब्बत हो माफ करने से। माफ तो हम बड़ी मुश्किल से ही करते हैं, मिन्नतें करा के दूसरों से, और फिर भी दिल नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं कि हमें माफ करना बड़े ही पसंद है, हम बस चाहते हैं कि जरूरी हम किसी को माफ कर दें, नहीं, हम तो कहते हैं माफ करना बड़ा मुश्किल है जी, माफ नहीं किया जाता मुझसे, हम तो ये कहते हैं ना, लेकिन अल्लाह ताला की जात वो है जो माफ करने को महबूब रखता है, उसको इतनी मोहब्बत है, उसको इतना अच्छा लगता है माफ करके, उसको माफ करता रहता है वो, इसलिए आफूव है ना, और वो पसंद करता है, वो मोहब्बत करता है माफ करने से। तो दुनिया में कोई आपने देखा है जो ऐसा हो जिसको इतनी पसंद हो? तो ये सिफत सिर्फ अल्लाह ताला में है। अगर दुनिया में कोई कभी माफ कर भी देता हो ना, तो उसकी भी एक हद होती है, ये नहीं होता कि वो हमेशा ही माफ करता रहे, आखिर वो भी कह देता है कितनी दफा माफ करूं, तुम्हारा तो काम ही यही है। वालदैन तक बच्चों से एक हद तक ही माफ करते हैं, 2, 4, 6 दफा, 8 दफा, 10 दफा, एक वक्त आता है वो भी कह देते हैं बस अब नहीं माफ किया जाता, अब चला जा अपनी मेरे हमारी नजरों के सामने से। माँ बाप ही आग करते हैं ना, और माफ करते भी हैं तो छोटी छोटी बातों में कभी माफ कर भी देते, लेकिन बाज दफा बच्चे कोई बड़ी गलती ऐसी कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब तो तेरी शक्ल ही नहीं देखनी। कोई बेटियां अगर कोई गलत कदम उठा लेती हैं, तो माँ बाप कैसे कट ऑफ कर देते हैं, फिर वो माफी भी मांगती रहे तो कहते हैं नहीं यार, अब सारी जिंदगी हमने तुझसे मिलना ही नहीं है, कभी भी नहीं तेरी शक्ल देखनी। तो अल्लाह ताला किसी चीज के ऊपर भी ऐसा नहीं कहता। आप देख लें कि इतना बड़ा गुनाह है ना शिर्क। शिर्क क्या चीज है? अल्लाह ताला को गाली देना है, इतनी बुरी बात है ये। उस पे भी वो फरमाता है अगर बंदा माफी मांग ले शिर्क से तो अल्लाह ताला शिर्क को भी बख्श देता है। अल्लाह कबीरा गुनाह है। तो सहाबा कराम जब मुसलमान नहीं हुए थे तो शिर्की शिर्क में ही थे ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको ईमान की दौलत नसीब की तो सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए। इंसान का कभी नहीं ये हौसला होता। हमारे दिल इतने बड़े होते ही नहीं, चाहे हम वालदेन ही क्यों ना, लेकिन एक लिमिट ही होती है हमारी भी, और डिपेंड भी करता है कि गलती कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला तो कबीरा कबीरा गुनाह में भी सबसे अजीम सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, उसको भी माफ करवा देता है। तो सोचें कि वो रब कितना करीम है, वो कितना रहीम है, उसको कितना अच्छा लगता है। सिर्फ एक दफा बंदा उसकी तरफ आए तो सही, और उसके लिए कहीं मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं कि वो अपने पादरी के पास जाते हैं, वो उनको माफी दिलाएगा, माफीनामा देगा। बस जहां है वहीं पे अल्लाह ताला से माफी मांग सकता है इंसान, पशेमान हो सकता है। शर्त ये कि इंसान के अंदर भी तो वाकई शर्मिंदगी हो। और वो वाकई माफ करने के लिए, माफी के लिए सीरियस हो। अल्लाह अकबर। हम तो कभी मजबूरी में माफ करते हैं, अच्छा नहीं लगता तब माफ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पसंद है माफ करना, वो मजबूर नहीं होता। और माफी इतनी बड़ी चीज है कि इंसान को अगर मिल जाए तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि तुम अल्लाह तआला से ये मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नाक अफूवन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़ाफ़ अन्नी। ये नहीं फरमाया कि तुम औलाद मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो। तो बख्शिश बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला की नाराजगी को खत्म करने वाली है। वो खुश हो गया तो सब कुछ ही फिर आपका है, वो नाराज हुआ तो फिर कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद दिन में 100 दफा इस्तिग़फ़ार किया करते थे, 100 दफा। तो हम चलो 100 दफा ही कर लें। और कभी भी इस चीज को ये ना समझे कि मैं बस बहुत दफा कह दिया, बहुत दफा मांग लिया, अब क्या मांगना। नहीं, मांगते जाएं, ना सिर्फ माफी बल्कि हर चीज मांगे, समझने कि ये दुआएं मांगने का ही वक्त है। अगर वो चीज नहीं भी मिली ना आपको, वैसे तो वो चीज मिल जाएगी, अगर वो नहीं भी मिली तो उस दुआ के बराबर कोई आने वाली मुसीबत डाल दी जाएगी, वो भी नहीं है तो इसका अजर व सवाब आखरत में जखीरा कर लिया जाए। इंसान आखरत में जाके देखेगा, कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ ना कबूल हुई होती, मुझे सब कुछ यही मिल जाता है, इतनी बड़ी चीजें मुझे मिल रही हैं, इतने बड़े खजाने सिर्फ उन दुआओं की वजह से जो मेरी दुनिया में नहीं कबूल हुई थी। तो दुआ मांगने वाला ना कभी महरूम नहीं रहता, ऐसा नहीं कि कभी वो उसको कुछ भी ना मिला हो। अगर एग्जैक्ट सेम चीज नहीं भी मिलती तो हो सकता है कोई बीमारी आ रही थी, हो सकता है कोई एक्सीडेंट आ रहा था, हो सकता है कोई ऐसी चीज आ रही थी आसमान से जो रोक दी गई इस दुआ की वजह से, वरना अजर व सवाब आखरत में। नमाज में भी देखें हम दुआएं ही मांगते ना, सूरह फातिहा भी दुआ है, पहले तो वुजू के बाद भी दुआ है, वुजू से ही स्टार्ट हो गई ना, अजान सुन ली तो फिर दुआ कर ली, अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। फिर नमाज में क़याम में दुआ है, फिर आपने सजदों में भी दुआ करते हैं, दोनों सजदों के दरमियान दुआ है, फिर तशहुद में आप बैठते हैं तो दुआएं हैं, सारा वक्त ही तो दुआएं हैं। दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदा दुआ करे। लोग तंग आ जाते हैं, एक दफा आप उनसे कोई मांगे, दूसरी दफा मांगे, तीसरी दफा आप कहेंगे बस तुमने तो एक ही काम पकड़ लिया, अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता। और छोटी भी मांगे, बड़ी चीजें भी मांगे, हम सिर्फ बड़ी चीजें मांगते ना, हम सोचते हैं नहीं छोटी चीजें ये तो मैं खुद ही कर लूंगी, इसके लिए मुझे अल्लाह ताला को बौदर करने की क्या जरूरत है। वो बौदर नहीं होता आपके मांगने से, उसको तो कोई तंगी नहीं होती, इसलिए आप छोटी भी चीज मांगे और बड़ी भी मांगे, किसी चीज को ये ना सोचे ये तो मेरे हाथ में ही है। इसीलिए जूते का तस्मा भी अल्लाह ताला से मांगने के लिए सहाबा कराम हाथ उठाते थे, पहले अल्लाह ताला से मांगा जाए फिर उसके बाद उसके लिए कुछ किया जाए। तो आप ये देखिए ना, छोटी छोटी चीजें भी, अब ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं कोई एक ही दुआ मांगूंगी ताकि वो ही कबूल हो जाए बस, नहीं, हर छोटी चीज हर बड़ी चीज, कि आपको क्या आपकी दुआ से तो छोटी चीज के लिए भी मांगी तो यहाँ मिल ही जाएगी, लेकिन दुआ का अजर भी लिखा जाएगा आपके लिए। दुआ मांगना भी इबादत है। अब जब हम सोचते हैं ना मैं इन कंट्रोल हूं, ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो मैं कर ही लूंगी, कोई चीज खत्म हो गई है ये तो मैं ले ही आऊंगी, तो क्या वो, जैसे मैंने पहले भी एक दफा बताया था ये वाक्या, कि कहा जाता है एक आदमी था वो कहीं जा रहा था, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या था गधा खरीदने जा रहा हूँ, लोगों ने कहा आप इंशाल्लाह कहो, इंशाल्लाह मैं खरीदने जा रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करो इसके लिए। तो उसने कहा कि मैं दुआ क्या करनी है और इंशाल्लाह क्या कहना, पैसे मेरे जेब में है, गधा बाजार में है, उसमें क्या जरूरत है कोई दुआ करने की इंशाल्लाह कहने की। अच्छा जब वो गया गधा, उसने देखा जेब से पैसे निकालने लगा, जेब ही कट चुकी थी, फिर वो मुंह लटकाए वापस आया, लोगों ने कहा क्या हुआ गधा नहीं लाए, कहता इंशाल्लाह मैं गया था बाजार में, इंशाल्लाह मैंने वहां पे गधा खरीदना चाहा था, इंशाल्लाह मेरी जेब कट गई। तो बात ये ना, देखिए इंसान बाज दफा हार्ड चीजों से सीखता है, कई चीजें हमारे लगती हैं कि हमारे हाथ में है, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी दुआ करें, उसमें भी अल्लाह ताला से पहले मांगे, आपके मांगने से वो खुश होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को अलग, वो तो सहाबा हैं इतने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतों की बशारतें दी हुई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी दुआएं देते थे, उनके लिए दुआ करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वो बहुत खुश होते थे सहाबा कराम, और बाज दफा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते थे आप हमारे लिए दुआ करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जब उमर उमरे पे रवाना हो रहे थे तो फरमाया उमर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, हजरत उमर को फरमा रहे हैं कि मुझे भी अपने दुआओं में याद रखा, और हजरत उमर ने फरमाया कि आपने ऐसी बात मुझे फरमाई कि इसके बदले मुझको तमाम दुनिया भी मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस बात से हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस काबिल समझा, ने मुझे फरमा रहे। तो दुआ तो बड़ा बेहतरीन तोहफा है जो आप अपने मुसलमान भाई को दे सकते, और अगर कोई दुनिया से चला जाए उसके लिए तो बेस्ट तोहफा ये है कि आप उसको दुआ का तोहफा भेजते। तो और इसके लिए कहीं वो भी नहीं कि कोई कब्रिस्तान जाएंगे तो फिर वहीं पे दुआ आपकी ज्यादा कबूल होनी है, आप जहां बैठे हुए उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं। वैसे भी हर इंसान अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे हालात से दो चार होता है कि जब सारे दुनिया के जो सहारे होते हैं ना वो जैसे टूट जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जाहिरी असबाब कुछ भी नहीं नजर आते, लगता है कि ये कैसे काम होगा, करीब तरीन अजीजों और अकारिब भी साथ छोड़ जाते हैं। तो उस वक्त इंसान इतना बेबस महसूस करता है, बेकसी का आलम उसके ऊपर होता है, तब इंसान के अंदर से जो आवाज उठती है ना कि अब कोई सहारा भी नहीं है। जब तक आपको सहारे नजर आ रहे होते ना, ये भी है ये भी है, कोई नहीं मुझे ये संभाल लेगा कोई नहीं, उस वक्त तक दुआ मांगने में भी वो चीज नहीं होती। लेकिन जब उसको लगता है ना बस, जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में बस, अब तो जी अल्लाह ही है बस, यानी अब उसने रियलाइज कर लिया दुनिया के सारे सहारे खत्म हो गए, ये जब वो कहता है ना बस जी अब तो अल्लाह ही है, तो इसका मतलब उसने मान लिया कि कोई दुनिया की ताकत अब मेरा ये काम नहीं कर सकती और सारे दरवाजे बंद है, बस एक दरवाजा तो अभी भी खुला हुआ है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुअम्मन युजीबुल मुस्तराई ज्यादा हो एक शिफसु, कौन है जो बेकरार की पुकार को सुनता है जब वो उसको पुकारता है, सूरह नमल में है ना, तो उसकी तकलीफ को दूर करता है। तो ये जब आप कहते हैं अल्लाह ताला बेकरार की दुआ को सुनता है, बेकरार की, तो बेकरार होते हैं आप, अब हम कहते हैं कि हम हमारी दुआ नहीं कबूल होती और ऐसे होते हैं, तो वाकई बेकरारी है कि जैसे सब जब चीज खत्म हो गई है। आप देख लेना जब यूनुस अलैहि सलाम की हम बात करते हैं तो मछली के पेट में उन्होंने कितनी बेकरारी से दुआ की, वही बेकरारी के इंसान बस डेस्परेट होके दिखाए अल्लाह ताला को, वाकई उसको चीज चाहिए होगी तो डेस्परेट होगा ना, और एक वैसे ही है कि बस अल्लाह ताला ये कर दे ये कर दे ये कर दे, जैसे कोई लिस्ट विश लिस्ट दे रहे हैं। और देखिए पैगंबर जो होते थे अपने अपने जमानों में, उन्होंने भी जिस चीज से भी गुजरे जिन हालात से भी, उनके पास एक सहारा होता था वो दुआ का, तो दुआ को अपना सहारा समझें कि ये मेरा सहारा है, ये मेरा हथियार है, चाहे दुनिया सारी कह रही हो कि नहीं हो सकता तुम्हारा काम, नहीं हो सकते तुम्हारे हालात सही, ये तो इम्पॉसिबल है, तब भी आपको ये यकीन हो ये मेरा एक रब तो है ना, उसका दरवाजा तो खुला हुआ है ना, चाहे सारे दरवाजे बंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताइफ में उन लोगों ने पत्थर मारे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी दुआ मांगी थी, ये अल्लाह मैं अपनी बेबसी की फरियाद तो तुझी से करता हूँ, तू ही मेरा मालिक है ना, यानी मैं अब और किसके पास जाऊंगा, अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तेरे सामने ही करूंगा फरियाद। तो पैगंबर भी जब दुआएं मांगते थे तो हमें तो दुआएं बहुत बहुत ज्यादा मांगनी चाहिए। तिर्मिज़ी में आता है ना, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। तो अगर आप दुआ करते हैं तो एक तरह से समझ लें आप कनेक्टेड हैं अल्लाह ताला से, और इसमें ये नहीं है कि हम तो नेक नहीं है तो हम कैसे दुआ करें और हमसे तो इतने गुनाह हो जाते, नहीं आप फिर भी दुआ करें क्योंकि अल्लाह ताला सबकी सुनता है। उसने तो इब्लीस ने भी मांगा था ना रब्बी अंजिरनी इला यौमि युबासून, तो अल्लाह ताला ने उसकी भी मान ली थी, उसने कहा था मुझे मोहलत दे दे कयामत के दिन तक, तो अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। और इसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, कोई आएगा वो अब दुआएं मांगेगा या फिर हम कहीं जाएंगे फलाने बुजुर्ग फलाने उनके पास, वो ही हैं जिनके जरिए हमारी दुआ होना, हमारी कहाँ होनी है कबूल, नहीं अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। ठीक है आप किसी को कह सकते हैं अपने लिए दुआ करने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस सारी डिपेंडेंसी लोगों पे, ये लोग ही हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमने खुद तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम दुआ करें, तो ये ना करें। तो ये जो खास तौर पे तकदीर की रात है, मैंने आपको बताया था ना कदर का एक माना तकदीर भी है, तो तकदीर की के पूरे साल में जो हमारी तकदीर का फैसला है ना वो फरिश्तों के हाथ में दे दिया जाएगा, और तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकती सिवाय दुआ के, तो फिर कितनी दुआ होनी चाहिए। आप बेशक जाहरी असबाब जरूर इख्तियार करें मगर दुआ को ना छोड़े, और जाहरी असबाब जितने भी इख्तियार करने के बाद ये ना सोचे कि अब तो मैंने इतने असबाब इख्तियार कर ही लिए, अब तो काम हो ही जाना चाहिए, अब दुआ करने की क्या जरूरत है, फिर भी दुआ करें। तो कुछ भी हो सकता है कि कोई वो काम ना हो, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। तो इसलिए दुआओं को अपना सहारा बनाएं, दुआओं के जरिए अपने काम करवाएं, और दुआ के अल्फाज जो भी आपको आते हो, जो भी चाहे किसी जुबान में आते हैं, और चाहे दिल में आप मांगते हैं, बल्कि दिल में मांगते हैं बहुत ही अच्छा है, या हल्की हल्की आवाज में उद्उ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह अल्लाह ताला को पुकारो तजर्रो के साथ और खुफिया आहिस्ता आहिस्ता, तो बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं, आहिस्ता। और जैसे फर्ज नमाज के तशहुद में आप दुआएं करें सलाम फिरने से पहले, और जब बारिश हो रही होती ना तब भी अल्लाह ताला की रहमत होती उतर रही होती उस वक्त, तो उस वक्त भी दुआएं करें। ये जो कीमती औकात हैं इनमें दुआएं करें, और जुमे में भी एक घड़ी है दुआ की जिसमें दुआ कबूल होती है। लेकिन फिर भी जब फौरन ऐसे ही नहीं दुआ कर लेनी, बल्कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना, फिर दुरूद, फिर दुआ। और जिसने आपको कहा होगा दुआ के लिए उसके लिए भी दुआ करें। अब उसके लिए आप दुआ करें तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है कि जो आपकी दुआ पे कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी ये करे, तुम्हारे लिए। मसलन आप कहते हैं या अल्लाह फलाने की मुसीबत है, या अल्लाह फलाना बीमार है, या अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे, तो आपको पता है वो फरिश्ता आपके पास खड़ा हुआ है। अगर गायबाना आप कर रहे हैं, वो बंदा सामने नहीं है, आप अपने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे, जरा नंबर बना लूँ इसको बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए देखो कितनी दुआ कर रहा हूँ, या गायबाना। तो दुआ के ऊपर फरिश्ते आप किसी के लिए कर रहे हैं, फरिश्ता आपके लिए करता है वही दुआ। इसलिए दूसरों के लिए भी दुआ करने से कभी घबराए नहीं, कभी ये ना सोचें कि मेरा टाइम इसकी दुआ में ही चला गया तो मेरा क्या बनेगा, नहीं, पहले खुद अपने लिए दुआ करें, फिर उसके बाद उसके लिए भी करें, और इसमें भी अपना फायदा समझे, मेरा ही फायदा हो रहा है। और खास तौर पे इन रातों में अल्लाह ताला का जिक्र जरूर करें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद हुक्म दिया, या अय्युहल लदीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, बहुत ज्यादा याद करो। और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं उनकी क्या सिफत बताई गई, वो उठते बैठते लेटे, यानी खड़े लेटे बैठे हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, हर हाल में। तो यानी आपके कोई अच्छे हालात चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम जिंदगी में चल रहे हैं, हर हालत में अल्लाह ही का जिक्र, उसी की तारीफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह कथीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम अल्लाह ताला को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाबी इसी में। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, या रसूलल्लाह जिहाद करने वालों में सबसे ज्यादा अजर पाने वाला कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को याद करता हूँ। फिर उसने पूछा या रसूलल्लाह रोजा रखने वालों में सबसे ज्यादा अजर किसको मिलेगा, नहीं ये सारे रोजा रख रहे हैं, अब हम सब रोजा रख रहे हैं, लेकिन किसके नमाज सबसे ज्यादा होंगे, जिसको सबसे ज्यादा अपने रोजे का सवाब मिलेगा। फरमाया जो अल्लाह ताला को रोजे में भी कसरत से याद करता होगा। उसने नमाज का पूछा, ज़कात का पूछा, हज जाए सदके का पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के बारे में यही जवाब दिया कि जो इसमें यानी हम रोजा रखे में इसमें भी अल्लाह ताला को याद करते रहना, कभी अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना होना। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जब पूछा गया या रसूलल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो फरमाया कि तुम इस हाल में दुनिया से रुखसत हो के तुम्हारी जुबान अल्लाह की याद में मशगूल हो, तुम्हारी जुबान पे अल्लाह ताला की याद हो। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है किसी इंसान के लिए कि वो अल्लाह ताला को जिंदगी भर भी याद रखता रहा और उसके बाद दुनिया से जाने लगा, तब भी अल्लाह ताला की याद उसकी जुबान पर थी। वो याद रखिए, अगर लैलतुल कदर है या नहीं है, लेकिन हर रात ही, हदीस शरीफ में आता है, हर रात अल्लाह ताला अपना हाथ फैलाता है कि दिन भर का गुनाह करने वाला तौबा कर ले, दिन के वक्त हाथ फैलाता है कि रात भर का गुनाह करने वाला तौबा कर ले। कितना उसको इंतजार है अपने बंदे की तौबा का कि दिन में भी और रात में भी वो हाथ फैलाता है। हमें तो चाहिए होता है कि कोई कन्विंस ही हमें करे कि हम कोई दुआ कर लें और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और ऐसे कर लें तो फिर हम करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला दिन में और रात में अपना हाथ फैलाता है। और फिर सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे और उसके सामने अपनी हाजतें ऐसे रखें कि जैसे बस ये इसी ने पूरा करना है, कोई और नहीं कर सकता, किसी और को माइंड में ना लेकर आए। ठीक है, जैसे एक बड़ी प्यारी बात आती है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग था, वो एक नौजवान के साथ हज करने गए। जो ये आराम बांध के कहा लब्बैक, तो गैब से आवाज आई ला लब्बैक का, तेरे लिए कोई लब्बैक नहीं है, यानी तेरी हाजिरी कोई कबूल नहीं है। नौजवान हाजी ने उनसे कहा, क्या आपने ये जवाब सुना है? बूढ़े ने कहा, हाँ मैं तो 70 साल से यही जवाब सुन रहा हूं, मैं हर दफा कहता हूं लब्बैक तो जवाब आता है ला लब्बैक। नौजवान ने कहा, फिर आप आते क्यों हैं? सफर की मुश्किल उठाते हैं, थकते भी हैं, खाम खा आने के जब ला लब्बैक का तो फिर क्या जरूरत है? तो जो बूढ़ा था ना, वो रो के कहने लगा, फिर मैं किसके दरवाजे पे जाऊं, वो चाहे मुझे रद्द करे या कबूल करे, मैं तो बस आना यही है, क्योंकि उसके दर के सिवा मेरे पास कोई पनाह ही नहीं। उस वक्त गैब से आवाज आई, जाओ सर, तुम्हारी सारी हाजिरियां कबूल हो गई। ये तफसीर रूहुल बयान में वाकया है। तो सुभान अल्लाह, जब इंसान ना सारे सहारे को छोड़ देता है ना, यहीं से भी किसी ने भी नहीं मेरा कुछ करना, अल्लाह तूने ही करना है, अगर तूने ना किया तो कोई और कर नहीं सकता। हर चीज के ऊपर, सिर्फ माफी के लिए नहीं, हर चीज पे अल्लाह ताला तूने ही मेरा काम करना, जाऊं तो जाऊं कहां। देखिए, लर्न करें आप दुआ करना, और सहारे ना ढूंढे जी, आप दुआ करा दें, आप दुआ करा दें, रोज दुआ करा दिया करें, ठीक है कोई दुआ करा देता ठीक, लेकिन कि हम अपनी दुआओं के लिए डिपेंडेंट ना हो। इंसान है, कोई आज है कोई कल नहीं है, फिर किसी और के पास चल पड़ेंगे, अब आप दुआ कराएं। मेरा खुद का कनेक्शन होना चाहिए ना अल्लाह ताला के साथ। आपको सिखाने के लिए जरूर दुआ कराई जा सकती है, आप दुआ से सीखें कि किस तरह से हमने दुआ करनी है, लेकिन डिपेंडेंट ना हो कि अगर कोई किसी दिन ना दुआ कराएगा, नहीं प्रोग्राम होगा, तो अब आप बैठे हुए हैं जी, अब मैं हम क्या करें। आपको खुद सीखना है, आपको खुद इसको ये कनेक्शन बनाना है अल्लाह ताला के साथ कि मैंने कैसे दुआ करनी है। इसी वजह से लास्ट इयर्स के अंदर मैं हर रात को नहीं दुआ कराती थी। इस तरह जिक्र भी मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको एक उसकी आदत और इसको एक तरीका पता चल जाए, एक उस रूटीन में आ जाए, वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप डिपेंडेंट हो कि कोई जिक्र कराए हमें तो फिर हम जिक्र करेंगे, कोई दुआ करा दे हमें तो फिर हम आमीन आमीन कहते जाएंगे बस। नहीं, मेरे मेरे रब के साथ दुआ जो है ना, वो एक राजो नियाज है, वो एक यानी एक खास ताल्लुक है। दुआ के जरिए भी आप जुड़ते हैं, ठीक है, आप लर्न कर रहे हैं, भी सीख रहे हैं, अभी आता नहीं है, वो एक अलग बात है, मगर ऐसा ना करें कि बस हमेशा ही सहारे ढूंढते रहें। क्या तो आपने खुद इसको समझना है, खुद इसको सीखना है, खुद आपने ये कोशिश करनी कि मैं दुआ करूं इस तरह से, मुझे पहले करनी है, पहले ये कहना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा। फिर तो इंशाअल्लाह ताला जब हम ये भी दुआ करें ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़ाफ़ा, तो फिर भी हमारे दिल से निकले, इसमें भी हमें ये ना हो कि भाई बस ये कलिमात कहने हैं कहने हैं, बस इतना इतनी दफा कह दिया, इतनी दफा कह दिया। अल्लाह ताला जो दिल वो होता है ना गाफिल, यानी उसको चाहिए तो नहीं बस ऐसे ही कहता जा रहा है, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता। तो इसलिए दिल को हाजिर करें और ऐसे अल्लाह ताला से मांगे कि जैसे वो एक वाकया बयान होता है ना कि हमारे असलाफ में से कोई एक जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक घर से एक बच्चा रोता हुआ निकला, उसकी माँ ने उसको कुछ कहा और रोता हुआ निकला, नाराज होके अब चला, चल पड़ा घर से। अब चलता गया, जब थोड़ी दूर गया तो उसने सोचा कि माँ के सिवा मेरा है कौन दुनिया में, और मैं चल तो पड़ा हूं तो मैंने जाना कहाँ है। जब उसको ये रियलाइज हुआ ना, माँ को छोड़ के किधर जाऊंगा, तो वापस आया, दरवाजा देखा बंद था, वहीं बैठ गया और रोते रोते कहने लगा कि माँ मैं तेरे सिवा किधर जाऊं, मेरे पास तो कोई जगह नहीं जाने को, और वहीं पे सो गया। माँ ने जब दरवाजा खोला, देखा बच्चा वहां पड़ा हुआ, तो जल्दी से उसको सीने से लगा लिया, तो उन्होंने उसके ऊपर फरमाया कि हाँ मैं अब समझा कि बंदा भी गुनाह करके अल्लाह ताला से दूर तो जाता है, लेकिन जितनी जल्दी वो ये रियलाइज कर ले कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कब तक जाओगे, किधर भागोगे आप, खुद सोचो ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कितना भागोगे। चलो भागो, फिर क्या होगा, एक दिन तो वापिस ही उसके पास आना है, खुद नहीं भी आओगे तब भी आना पड़ेगा, क्योंकि लौटना है एक दिन, और कुरान बार बार हमें याद दिलाता है तुम्हें लौटना है, वापिस जाना है, तो एक दिन तो लौटना है, फिर क्या करोगे, इससे पहले कि लौटने का दिन आए खुद लौट के आ जाओ। ऐसे ना बनो कि जैसे एक मुजरिम होता है, भाग रहा होता है पुलिस से दूर, तो उसको फिर पुलिस पकड़ के लाती है, हैंडकफ करके लाती है, अरेस्ट करके लाती है, तो फरिश्ते आए तो ऐसे ही भाग रहे हो, कोई अल्लाह ताला से दूर भाग रहा है तो तब कैसे वो लेकर आएंगे। इसी तरह हम तो ऐसे नहीं आना चाहते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो उससे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह ताला भी उसे मिलना चाहता है। मुलाकात का शौक का मतलब क्या है, ये नहीं कोई को मरने का किसी को शौक हो जाए, मतलब ये है कि वो कौन सा दिन होगा मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात हो और उसको इस चीज अच्छा लगता है, ये तसव्वुर भी कि मेरा रब से मेरी मुलाकात हो। तो वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो भाग रहा था, जो मुजरिम की तरह था, ओके, जो अल्लाह ताला का बागी है उसको तो कभी भी उससे मुलाकात का शौक नहीं होगा, जो अल्लाह ताला का फरमा बरदार है वो ही शौक रखेगा, जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है, तो उसके बागी नहीं बनना, बल्कि उसके लिए ये तड़प रखनी है कि अल्लाह मैं तो तेरी तरफ आना चाहता हूं, तो तू मुझे कबूल कर ले। तो जैसे कहा जाता है कि मुजल्फा में इमाम फरियाबी थे, तो वो कहते हैं कि मैंने देखा एक औरत नमाज पढ़ी और उसके पास का बूढ़ा खामिन ना दुआएं कर रहा है, क्या कहता है, मौला हमने दुनिया वालों को देखा है कि जब गुलाम उनकी खिदमत करते करते बूढ़ा हो जाता है तो वो उसको आजाद कर देते, मैं भी तेरी बंदगी करते करते बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे भी आजाद कर दे। देखिए किस तरह से बात करने के ढंग है ना, कितनी प्यारी बात है, इस्लाम में जो बूढ़ा हो गया है, अल्लाह तू मैं तो तेरी इबादत करते करते ही बूढ़ा हो चुका हूं, तो बूढ़े के जो सफेद बाल है उसकी भी अल्लाह ताला को लाज आती है कि इसने इतनी जिंदगी गुजार दी मेरी इबादत में, मेरी बंदगी करते हुए। तो आप डिफरेंट तरीकों से आप अल्लाह ताला से बात करें अपनी सिचुएशन को आगे रखते हुए, आप कितनी डेस्परेट हैं और आपकी सिचुएशन कैसी है जिसमें आपकी नजर सिर्फ अल्लाह ताला पे है, तो बजाय हम लोगों पे कहें, तकिया करें कि वो दुआ करें, आप भी हमें दुआओं में याद रखें, आप भी हमें दुआओं में याद रखें, ठीक है, आप किसी को कह देते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड ना करें कि लोग ही कर रहे होंगे। आप अपनी दुआओं के लिए सबसे पहले खुद दुआ करें और इन रातों में करें, और इंशाअल्लाह ताला जैसे आप जब दुआ का आप तरीका एक समझ जाएंगे तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको मजा आएगा दुआ करने में, आपको शौक होगा दुआ करने का क्या। तो इसलिए दुआ को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें, आपके पास बहुत बड़ी पावर है दुआ की पावर। और कभी ये ना सोचें हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कभी ना ये कहें, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इस वो इतना अता फरमाता है, उसने तो बगैर मांगे ही कितना कुछ दे दिया, और इंसान का एक दुआ नहीं कहीं उसकी वैसे नहीं कबूल हुई जैसे वो समझता था, तो उसने सोच लिया कि बस अब मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती। ये कभी ना करें। तो अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि जो अल्लाह ताला से जैसा गुमान रखेगा फिर वो वैसा ही उसके लिए होगा। अगर कोई कहता है ठीक है मेरी दुआ नहीं कबूल होती, ठीक है फिर नहीं होती, जाओ फिर, ठीक है। तो इसलिए जब ये प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए तो उसके बाद भी आप दुआ करते रहें। आपसे उठ उठ के बहुत लंबे लंबे नफल नहीं पढ़े जाते, बहुत ज़्यादा नहीं कुरान पढ़ा जाता, तब भी दुआ में तो कुछ नहीं है ना। और ये भी सीखें कि मैंने क्या मांगना है। अक्सर लोगों को यही नहीं समझ आती हम मांगें क्या, वो किस तरह मांगना है वो तो बाद की बात है, हम मांगें क्या। दो चार चीज़ें ही होती हैं वो उसके बाद ख़त्म हो जाती है उनकी मांग, अब मांगना और क्या है। इंसान तो एक एक लम्हा अल्लाह ताला का मोहताज है। मांगे शुरू से आखिर तक हर चीज में, तो सांस से लेकर जिंदगी से लेकर, जिंदगी की हर जरूरत से लेकर और दुनिया और आखिरत से लेकर हर जगह पे हमें जरूरत है अल्लाह ताला की। उसकी नजरे करम ना हो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद हम अपने आप को इतने डिपेंडेंट समझते नहीं है, और लगता है कि हम खुद ही सेल्फ सर्वाइव कर रहे हैं, हम खुद ही बस चलते जा रहे हैं। एक एक सांस और एक एक कदम के लिए जरूरत है। जब ये आपने रियलाइज कर लिया ना कि मैं तो बिल्कुल ही बेबस हूं, निकम्मा हूं और इतना कमजोर हूं कि वो अपनी सांस भी खुद नहीं चला सकता, आप एक एक चीज की दुआ करने लगे ना तो दुआएं हैं इतनी है कि वक्त खत्म हो जाए। दुआ से आप कभी बेनियाज हो ही नहीं सकते। और फिर दुआ एक दफा नहीं कहना कि बस एक दफा कह दिया चलो ये मिल गया, ये बार बार कहें, बार बार कहें और उसको रिपीट करें। यही हमें सिखाया जाता है कि हम बार बार दुआ मांगते रहें। अब हम मतलब है पैगंबर एक दफा बस दुआ मांगते और बस उसके बाद बैठ जाते। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में मिले तो आपका मतलब है पूरी जिंदगी उन्होंने कभी दुआ नहीं मांगी होगी, बस उस वक्त मांगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कब से वो दुआएं कर रहे होंगे। तो दुआ करते रहना है, और अल्लाह ताला हंसता है उस बंदे के ऊपर कि जो दुआ करता है और उसके बाद एक दिन कहता है अभी अभी उसकी दुआ कबूल होने ही लगी थी, और वो कहता है मैं तो तब से दुआ मांग रहा हूँ, मेरी तो दुआ कोई कबूल ही नहीं हुई। और अल्लाह ताला उसके ऊपर हंसता है कि देखो वो तो वक्त आ ही गया था इसकी दुआ की कबूलियत का। तो आपका रब बहुत बहुत अता करने वाला है, बहुत अता करने वाला है। उसके साथ अच्छा, सबसे अच्छा गुमान रखें। जितना आपको किसी से भी गुमान है ना कि फलां मेरा काम कर देगा, फलां कर देगा, मुझे पता है फलां को मैं कहूंगी ना उसने नहीं टालना, अब वो किसी से भी कोई गुमान है ना, उससे ज्यादा अच्छा आपके पास गुमान अल्लाह ताला के बारे में होना चाहिए कि वो बहुत ही अता करता है। तभी तो आपके दिल में मोहब्बत होगी ना। और अगर दिल में ये है मेरी तो दुआएं नहीं कबूल होती, तो इसका मतलब आप बदगुमान है अल्लाह ताला के बारे में। इंसान को कभी उससे मोहब्बत नहीं हो सकती जिससे वो कहे कि पता नहीं उसने तो मेरी को सुननी ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता किसी के लिए हमारे दिल में बहुत मोहब्बत हो और फिर हम ये अल्फाज कह रहे हैं। और आप ये कह के देखें मेरे रब ने कभी मुझे मायूस नहीं किया, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया था यार आप तुझसे मांग के कभी मैं महरूम नहीं रहा। हम इसमें मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं ना, आप क्या क्या देखे, रब तुझसे मांग के मैं कभी महरूम नहीं रहा। तो ये बंदा उसी के लिए कह सकता है जिससे मोहब्बत भी होती है और गुमान भी अच्छा होता। बदगुमानियों के साथ कौन सी दुआएं होती हैं? अगर दिल में बदगुमानी है और दुआएं मांग रहे हैं, आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, तो फिर मांग क्या रहे हैं? पहले दिलों को साफ करके आए, अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान, उससे उसकी मोहब्बत और उसकी ताकत और कुव्वत और कुदरत के ऊपर यकीन कि वो कर सकता है, वो कादिर है। और फिर आपके पास इतने सारे वाकयात कुरान में है, कैसे कैसे किस किस ने दुआ की और कैसे उसकी दुआ कबूल हुई। अपने नेक आमाल का भी वसीला दे सकते हैं, जैसे गार वालों ने दिया था। कोई अगर जिंदगी के अंदर कोई ऐसे काम जिसके ऊपर आपको हो के मुझे लगता है कि ये वाला काम है ना, ये मैंने बिल्कुल खालिस अल्लाह ताला के लिए किया था, इसमें बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं कहूँ कि जरा बराबर भी कहीं नियत के अंदर कुछ और नहीं था, 100% आप श्योर हैं, उस काम का अपना वास्ता दे, ये अल्लाह ताला ये काम अगर तुझे पसंद आया था ना तो मेरा ये काम कर दे, ठीक है? तो मैं विश करती हूँ कि मेरा दिल करता है, मैं जिस अब उसे पढ़ाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं आप सारों के दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसे डाल दूँ कि आपको कोई किसी और की जरूरत ना हो, आपका अल्लाह ताला के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन हो, उससे मोहब्बत हो जाए, ऐसी मोहब्बत जो किसी और के साथ नहीं हो सकती। तो आई विश और आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह होता है।